आप सुन रहे हैं अमर उजाला आवाज।
ब्योमकेश बख्शी की कहानी विपदा का संहार भाग दो। कहानी में अभी तक आपने सुना कि कई महीनों से ब्योमकेश बख्शी को कोई काम नहीं मिलता और वो अजीत बाबू के साथ घर में हताश बैठा होता है। तभी उनके पड़ोसी देव कुमार बाबू का बेटा हाबुल कमरे में दाखिल होता है। हाबुल रोते हुए बताता है कि उसकी बहन की अचानक मौत हो गई है, जबकि वो बिल्कुल ठीक थी। वो ब्योमकेश से आग्रह करता है कि उसके घर चलकर मामले को देखे। अब आगे। जल्द ही हम देव कुमार बाबू के घर पहुंच गए। घर सामने से तिकोना था, जैसे दोनों तरफ बने घरों ने इस घर को दोनों ओर से घेर कर तिकोनिया कर दिया हो, इसलिए नीचे एक कमरा और रसोई दिखाई दी। उसके साथ भंडार घर और पीछे बाथरूम था। घर के दरवाजे पर पहुंचते हुए हमें दिखाई दिया एक महिला खड़ी चीख रही है। स्वर में परेशानी और व्याकुलता थी, लेकिन शोक का आभास कतई नहीं था। साफ था कि महिला अपनी युवा पुत्री के मरने के शोक से चिल्ला रही है। दरवाजे पर एक बूढ़ा नौकर भी भ्रमित होकर खड़ा था। ब्योमकेश ने उससे कहा, तुम यहां काम करते हो ना, जाओ सामने के घर से डॉक्टर बाबू को बुला कर लाओ। कुछ काम मिल जाने से वो खुश होकर बोला, जी सर, और चला गया। हम लोग हाबुल के साथ अंदर दाखिल हुए। जिस महिला की चीख हमें बाहर से सुनाई दे रही थी, वो सीढ़ियों के नीचे खड़ी चिल्ला चिल्ला कर अपने से ही बात करती जा रही। हमारे कदमों की आवाज से उसने चौंक कर हमें अजीब नजरों से देखा कि हाबुल के साथ दो अजनबी आ रहे हैं, तो जल्दी से आंचल ढककर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गई। चढ़ते समय मैंने उसके चेहरे की झलक से महसूस किया कि उसे हमारा आता अच्छा नहीं लगा। झलक के तुरंत बाद उसने चेहरे को आंचल से छिपा लिया। हाबुल धीरे से बड़बड़ाया, मेरी माँ है। ओह अच्छा, ब्योमकेश ने कहा, रसोई किधर है? हाबुल ने छोटे से चौक की ओर इशारा कर दिया। उसके बगल में छोटे छोटे कमरे थे। सबसे बड़ा कमरा रसोई घर था। बाहर नल लगा था, जिसकी टपकती बूंदों से वो स्थान चिकना हो गया था। हमने अपने जूते उतार दिए और अंदर गए। कमरे में रोशनी की कमी थी, कोई खिड़की भी नहीं थी। हाबुल ने आगे बढ़कर रसोई का स्विच दबाया, जिससे एक मटमैला प्रकाश फैला और हमें साफ दिखाई देने लगा। दरवाजे के सामने वाली दीवार से सटे दो कोयले के चूल्हे एक ऊंचाई पर बने हुए थे, जिनमें कोयला भरा हुआ था, पर उनमें जला हुआ एक भी ना था। एक चूल्हे के सामने एक लड़की आगे को झुकी खड़ी थी, जैसे पूजा कर रही हो। उसका सिर आगे की तरफ झुका हुआ था, एक हाथ नीचे लटका झूल रहा था, लेकिन पीछे से देखने में नहीं लगता था कि उसके देह में जान नहीं है। ब्योमकेश ने झुककर उसके हाथ की कलाई पकड़कर नब्ज देखी। उसके चेहरे को देखकर मैं जान गया कि उसको नब्ज नहीं मिली। उसके हाथ को देखकर ब्योमकेश ने उसके मुंह को उठाने की कोशिश की। वो थोड़ा सा ही ऊपर उठ सकी, क्योंकि अब तक सारे शरीर में ऐठन जम गई थी। देखने में लड़की आकर्षक थी, रंग गोरा, तिकोनिया चेहरे पर मछली जैसे। उसकी उम्र के लिहाज से शरीर भरा भरा था। लंबे बालों को शायद उसने यूं ही छोड़ रखा था, जो पीछे झूल रहे थे। वह छपी सूती साड़ी पहने थी, दोनों हाथों में सोने की तीन तीन चूड़ियां, कान में टॉप्स और गले में हल्का स्वर्ण हार था। ब्योमकेश ने नजदीक से एक बार फिर उसका मुआयना किया। वो सीधा होकर तीन कदम पीछे गया। वहां से उसने एक बार फिर देखा। पूरा मुआयना करने के बाद वो दोबारा उसके पास गया और इस बार लड़की के मुड़े हुए दाएं हाथ को देखा। उसने हथेली देखनी चाही तो देखा वो कोयले से काली हो गई थी। साफ था कि उसने ही चूल्हे में कोयला भरा था। उसने देखा कि हथेली के अंगूठे से पहली उंगली सटी हुई है। दोनों को अलग करने में एक छोटा तिनका निकलकर नीचे गिर गया। उसने उठाकर देखा, वो जली हुई माचिस की तीली थी। तीली को नजदीक से देखने के बाद उसने फेंक दिया। फिर उसने लड़की के बाएं हाथ को देखा, हथेली बंद थी। उसकी उंगलियों को हटाकर मुट्ठी खोली तो नीचे माचिस की डिब्बी गिर गई। ब्योमकेश ने डिब्बी को खोलकर देखा, उसमें कुछ तीलियां बची हुई थी। फिर सोचकर वो धीरे से बोला, वही तो जो मैंने सोचा था, वही निकली। मौत तभी हुई जब उसने चूल्हा सुलगाने के लिए माचिस चलाई। ब्योमकेश ने अब उसे छोड़कर रसोई घर में चारों ओर नजर दौड़ाई। उसने लड़की के पीछे से दरवाजे तक फर्श पर बने पदचिन्हों को देखा और बोला, नहीं, मौत के समय रसोई घर में कोई और नहीं था। बाद में एक महिला ने प्रवेश किया और फिर हाबुल अंदर आया। उसी समय रसोई घर के बाहर कुछ आवाजें सुनाई दी। ब्योमकेश बोला, शायद डॉक्टर साहब आ गए, हाबुल उन्हें अंदर लेकर आओ। हाबुल चला गया। उस समय मौका देखकर मैंने पूछा, कुछ मिला? ब्योमकेश ने हताश स्वर में कहा, ऐसा कुछ नहीं, इतना जरूर पता लगा कि मौत से पहले तक लड़की को जरा भी आभास नहीं था कि उसकी मौत होने वाली है। हाबुल डॉक्टर रुद्रा को लेकर आ गया। डॉक्टर रुद्रा मध्य वै के कलकत्ता के जाने माने फिजिशियन थे, किंतु वो अपने रूखे स्वभाव और क्रोध के कारण बदनाम भी थे। उनका पारा हमेशा आसमान पर रहता था, यहां तक कि मरने वाले मरीज के सामने भी उनका बर्ताव इतना बेहूदा और कर्कश होता था कि कोई और डॉक्टर होता तो उसको दुकान छोड़कर भाग जाना पड़ता। लेकिन जहां तक योग्यता का प्रश्न था, वो अपने हुनर में इतने माहिर थे कि लोग उनके स्वभाव के बावजूद हमेशा उन्हीं के पास जाते थे, और यही उनकी सफलता का रहस्य था। उनकी प्रैक्टिस भी बहुत तगड़ी थी। डॉक्टर रुद्रा की शक्ल उनका परिचय देने के लिए काफी थी। काले यानी कोयले के काले, घोड़े जैसे मुंह पर चमकती छोटी छोटी लाल आंखें, जिस पर पड़ती वो दहशत में आ जाता। होंठों पर भी वो कर्कशता। कोट पैंट और जूते पहने जैसे ही उनका प्रवेश हुआ तो लगा जैसे वातावरण में तेज गर्मी की लहर व्याप्त हो गई है। हाबुल ने चुपचाप अपनी बहन की ओर इशारा कर दिया। डॉक्टर रुद्रा ने अपनी आदत के अनुसार रूखे स्वर में कहा, क्या है, मर गई क्या? ब्योमकेश बोला, आप देखिए और बताइए। डॉक्टर रुद्रा ने क्रोधी निगाह से ब्योमकेश को देखा और बोले, आप कौन हैं? मैं परिवार का मित्र हूं। ओह, उन्होंने ब्योमकेश को अनसुना करते हुए हाबुल से पूछा, ये लड़की कौन है? देव कुमार बाबू की बेटी? हाबुल ने स्वीकारोक्ति में सिर हिला दिया। डॉक्टर रुद्रा के चेहरे पर एक उत्सुकता तैर गई। उन्होंने भौंहें सिकुड़ते हुए पूछा, इसी का नाम रेखा है? हाबुल ने फिर सिर हिला दिया। क्या हुआ इसे? कुछ नहीं, एकाएक। डॉक्टर रुद्रा ने झुककर लड़की की नब्ज देखकर आंखों की पुतलियां देखी और उठकर बोली,
इसकी मौत हो चुकी है। मौत लगभग 2 घंटे पहले हुई है। शरीर अकड़ गया है।
उन्होंने ये बड़े चाव से कहा, जैसे ये सुनकर मौजूद लोगों में खुशी की लहर फैलने वाली हो। ब्योमकेश ने पूछा, क्या ये संभव है कि मौत का कारण पता लग सके?
ये लाश के पोस्टमार्टम पर ही पता चलेगा। मैं जाता हूं। हाँ, मेरी फीस के 32 रुपए मेरे घर भेज दें। और हाँ, पुलिस को सूचित करना ना भूलिए, क्योंकि मौत अप्राकृतिक है।
ये कहकर डॉक्टर रुद्रा घर से बाहर निकल गए। रसोई घर से बाहर आते हुए ब्योमकेश बोला,
हाँ, पुलिस को तो सूचित करना तो जरूरी है, अन्यथा बाद में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। मैं स्थानीय चौकी के इंस्पेक्टर वीरेन बाबू को जानता हूँ, मैं उन्हें सूचित कर देता हूँ।
उसने कागज पर कुछ पंक्तियां लिखकर नौकर को देते हुए कहा कि वो ये चिट्ठी स्थानीय पुलिस चौकी में जाकर दे दे। फिर बोला, बॉडी से अब और कोई छेड़छाड़ ना हो, पुलिस आकर खुद ही सब देखेगी। और उसने रसोई घर को बंद करके हाबुल से कहा,
हाबुल, एक बार रेखा के कमरे का मुआयना कर लेना उचित होगा।
हाबुल ने गंभीर आवाज में कहा,
चलिए।
और आगे आगे सीढ़ियां चढ़ने लगा। शुरू के रोने धोने के बाद वो जैसे जड़वत हो गया था और यंत्रवत बात करता रहा। जो पूछा जाता उतना ही उत्तर देता, बस। प्रथम तल पर 3 कमरे थे, जिनमें से अंतिम कमरा रेखा का था, और पहले 2 कमरे संभवतः देव कुमार बाबू और उनकी पत्नी के बेडरूम थे। रेखा का कमरा हालांकि छोटा था पर साफ सुथरा था। एक तरफ पलंग, दूसरी ओर खिड़की के पास डेस्क, जिसके पास 2 बुकशेल्फ थे जिनमें बंगला पुस्तकें भरी हुई थी। एक कोने में शीशा लगा हुआ था, जिसके नीचे ब्रश, रिबन, हेयर क्लिप टंगे हुए थे। कहने का मतलब यह है कि कमरे में आकर लगता था कि यह एक दक्ष, समझदार, पढ़ी लिखी लड़की का कमरा है। ब्योमकेश एकाध चीजों को उठाकर देखता रहा। उसने हेयर पिन और रिबन को उठाकर देखा, उसके बाद खिड़की के पास जाकर देखा। वहां से डॉक्टर रुद्रा का घर दिखाई देता था। दोनों की छतें आसपास थी। उसके बाद वो डेस्क के पास आया, दराज खोलकर देखा। कुछ नोटबुक, लेटर पैड, सेंट की शीशी और कुछ सफेद गोलियां रखी थी।
एस्पिरिन? क्या रेखा एस्पिरिन लेती थी?
हाँ कभी कभी, जब कभी उसे सिर में दर्द होता था।
हाबुल ने उत्तर दिया। ब्योमकेश ने दराज बंद कर दी और तेज कदमों से चहलकदमी करने लगा। एकाएक वो पलंग के पास रुक गया। उसने ध्यान से देखा, रजाई पैरों की तरफ सिकुड़ी पड़ी थी, चादर पर सलवटें थीं और तकिए पर सिर के निशान मौजूद थे, यानी रात में रेखा अपने बिस्तर पर सोई थी। कुछ क्षणों के लिए मेरा दिमाग गमगीन ख्यालों में डूब गया। इस जीवन का क्या भरोसा है? अभी तक उसके नींद के लक्षण ज्यों के त्यों बने हुए हैं और वो प्राणी दूसरी दुनिया में पहुंच गया है। कितना क्षणभंगुर है जीवन। विचारों में मग्न ब्योमकेश ने तकिए को उठाकर देखा तो उसके नीचे एक हरे रंग का कागज तय किया रखा दिखाई दिया। उत्सुकता से ब्योमकेश ने उसे उठा लिया। वो लेटर पैड का कागज था। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद ब्योमकेश ने उसे खोल लिया और पढ़ने लगा। मैं भी ब्योमकेश के पीछे खड़ा होकर देखने लगा। लिखावट स्त्री की थी। पत्र इस प्रकार था। नोटुदा, हमारा विवाह अब नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे पिता ने 10,000 रुपए दहेज के रूप में मांगे हैं और मैं जानती हूं कि मेरे पिता इतनी बड़ी रकम अदा नहीं कर सकते। शायद तुम जानते होगे कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से विवाह नहीं कर पाऊंगी, लेकिन इस घर में अब जीना भी कठिन हो गया है। क्या तुम मेरे लिए जहर ला सकते हो? मैं जानती हूं कि तुम्हारी फार्मेसी में कई प्रकार के जहर होते हैं। मुझे कोई जहर ला दो, और नहीं लाओगे तो जीवन समाप्त करने का मैं कोई दूसरा साधन ढूंढ लूंगी। तुम जानते हो मैं अपना वादा निभाती हूं। सदैव तुम्हारी रेखा। ब्योमकेश ने शांत वातावरण में पत्र को पढ़ा और उसे हाबुल को दे दिया। उसने फिर से वो पत्र पढ़ा और पढ़ते पढ़ते रोने लगा। आंसुओं की धार उसके चेहरे पर बहने लगी। वो बोला,
मुझे मालूम था एक दिन ये होगा, रेखा आत्महत्या कर लेगी।
ये नोटू कौन है?
नोटुदा डॉक्टर रुद्रा का लड़का है। दोनों के रिश्ते की बातचीत चल रही थी। नोटुदा अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन उस जंगली पुरुष ने 10,000 के दहेज की मांग पर पिताजी को नाराज कर दिया।
ब्योमकेश ने अपनी हथेलियों से एक बार अपना चेहरा साफ किया और बोला, लेकिन चलो छोड़ो, जाने दो। उसने हाबुल के हाथों को पकड़कर बिठाया और आहिस्ता धीमी आवाज में उसे सांत्वना देने लगा। रुंधे गले से हाबुल बोला,
ब्योमकेश, मेरी एक बहन थी जिनको मैं अपना कह सकता था। माँ गुजर गई है, पिता के पास हमारे लिए समय नहीं है।
उसने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। थोड़ी देर में ब्योमकेश के प्रयासों से हाबुल कुछ संभल गया। तब ब्योमकेश उठ खड़ा हुआ और बोला,
चलो अब पुलिस आती होगी, उससे पहले मैं तुम्हारी माँ से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ।
कहानी में आगे क्या होता है ये सुनिए अगले भाग में, यानी भाग 3 में।